सफल कर लो सांसें अपनी, कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना। पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
सूचना में जो पूछ रहा हूं, भगवान धरा पर आए और हम सबके लिए कौन सी गिफ्ट लाए? कौन से? स्वर्ग की गिफ्ट, जहां प्राप्त नहीं कोई वस्तु, जो कुछ जीवन में चाहिए वो सब भरपूर है। थोड़ा बहुत नहीं कि पैसा चाहिए तो खाने पीने जितना है, भरपूर धन संपदा। और उससे भी श्रेष्ठ गिफ्ट है संगम योग, मौजों का योग। और क्या सफल करने को कहा विशेष रूप से? विवेक भाई भी आए, संकल्प और समय। बाकी तो कहे ही सब, श्वास सफल करेंगे तो फर्स्ट क्लास स्वास्थ्य मिलेगा, 21 जन्म ही नहीं बाद में मिलेगा। बीमारियां तो सच तो ये है कि थोड़े ही समय की है, 100 साल की मुश्किल से होंगी। अब तो कंट्रोल भी कितना हुआ, लेकिन बीमारियां फिर भी बढ़ती जाती हैं। कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, श्वास सफल करेंगे तो। भक्ति में तो एक मान्यता है कि मनुष्य को गिनती के श्वास मिलते हैं। अब उन्हें कोई वेस्ट करे या सफल करे, गिनती के मिलते हैं वो तो किसने गिना है? कौन गिनेगा गिनती के श्वास? ये गिने जाएंगे कितने चलते हैं भाई एक मिनट में? हैं 72 बहुत ज्यादा हैं तो। चलो जितने भी चलते हैं वो सब किसमें सफल हों? याद में सफल हों, सेवाओं में सफल हों, श्रेष्ठ विचारों में सफल हों। समय हमारा एक एक क्षण संतुष्टता दे हमें कि सफल हुआ। पढ़ाई में भी यही ध्यान रखना होता है ना, जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप में से भी कई स्टूडेंट बहुत होशियार रहे होंगे, कितना ध्यान देते हैं, समय को महत्व देते हैं। और जो स्टूडेंट समय को महत्व न देके बुरे संग में चले जाते हैं वो फिर बेकार। आते रहते हैं हमारे पास ऐसे स्टूडेंट, अभी भी शाम को आए शांतिवन में, माँ बाप अपने बच्चे को लाए, नाइन्थ क्लास में है, लेकिन क्रोध बहुत का हम सब सोचते हैं इससे दूर भाग जाएं माँ बाप, और सारी रात व्हाट्सएप पे फोन पे पढ़ाई के नाम पे। मैंने पूछा पढ़ाई, पढ़ाई के नाम पे जीरो, वही बता रहे थे। देखो कैसा जीवन होगा, क्रोध से क्या क्या होता है बोलो। सबसे पहले तो आजकल बीमारियां बढ़ती हैं, विवेक शक्ति नष्ट हो जाता है, उसके चेहरे से ही दिख रहा था कि डाउन हो रहा है, खेल सब हेल्थ बिगड़ जाएगी पूरी तरह से। और ऐसा व्यक्ति कुछ ही समय बाद संसार में अकेला हो जाता है, माँ बाप ही जब उसके साथ नहीं रहना चाहते। कभी सुना ऐसा? मैं भी पहली बार सुना कि माँ बाप दोनों कह रहे मन करता इसे दूर चले जाएं, उसको दूर कर दें या नहीं, हम दूर चले जाएं उससे, तो कैसी दयनीय स्थिति हो जाती है ना। सजाएं भी हैं और कर्मों का हिसाब किताब भी है। अब पहली चर्चा हम करेंगे, संगम युग मौजों का युग है। मौज कौन सी? खाने पीने की। बाबा से भगवान से मिलन की मौज, ऐसा समय दोबारा नहीं आता। भाग्यवान आत्माओं को ही ये सुंदर अवसर मिला है। और किस चीज की मौज है अब चिंतन करेंगे। इस जीवन को अगर हमें मौजों का जीवन बनाना है तो क्या क्या ध्यान दें, क्या क्या अभ्यास करें। सबसे ज्यादा मौज तो याद में है, क्योंकि योग अर्थात भगवान के साथ रहना, तो वो आनंद का सागर है, उसके वाइब्रेशंस में रहना, माना जीवन को आनंदों का सागर बना देना, सागर ही बन जाएंगे ना। भगवान के साथ रहना माना उसकी एनर्जी में रहना, उसके वाइब्रेशंस में रहना, प्यार भी बहुत फील होगा, सुख बहुत मिलेगा। मौजों के जीवन में सुख भी बहुत चाहिए, जो सुख धन में नहीं मिल रहा है, जो सुख संबंधों में नहीं मिल रहा है, साधनों में नहीं है, वो सुख वहां रहकर मिलेगा। दूसरी मौज किसमें आएगी? बाबा का करते अतीन्द्रिय सुख, लेकिन किन गोप गोपियों से जो लड़ते हैं, किन गोप गोपियों से पूछो जो आत्मभिमानी होकर रहते हैं। तो दूसरा मौजों का या सुखों का आधार है आत्मभिमानी स्थिति, उसका बहुत सुंदर अभ्यास और फिर अनुभव। ऐश्वर्यी बनना अलग चीज, प्रैक्टिस करेंगे हम जो लास्ट में बाबा ने कहा, ऐश्वर्यीपन और फरिश्ते स्वरूप की ड्रिल करो। जिनका योग नहीं लगता वो ये ड्रिल करेंगे, इस पर आ जाते हैं। लेकिन आत्मविमानी बनना अर्थात आत्मा के सभी गुणों को स्वीकार करके उसको जीवन में लाना, इसको कहते हैं उसका स्वरूप बन जाना। आत्मा शांत है, बहुत बाबा के बच्चे ऐसे कहते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, जैसे कोई और हो। मैं हूं ये स्वीकार कर लें, मैं प्रेम स्वरूप हूं, माना प्रेम से भरपूर हूं, सभी के लिए मेरे चित्त में बहुत प्रेम है। तो जितना जितना वो अभ्यास करेंगे, जो तीसरी बात हम करेंगे, मौज उसके जीवन में होती हैं जो व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। और अगर हम आत्मविमानी होकर रहेंगे तो व्यर्थ खत्म होता जाएगा। अच्छा चिंतन होगा हमारा। तो सभी मधुवन में कौन कौन रहेंगे कुछ समय, यहाँ हाथ उठाओ, सेवाधारी हैं और भी कई हैं, आप सभी भी और जो दो चार दिन रहने वाले वो भी इस श्रेष्ठ स्थान पर, श्रेष्ठ कहें या संसार में सर्वश्रेष्ठ इस स्थान पर अशरीरीपन और फरिश्तेपन की ड्रिल करेंगे। मैं आपको सरल सी विधि बता देता हूँ, फिर मौजों में आते हैं। वो विधि है ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजेंगे, बजते हैं ना, यहाँ तो ऊपर ही बजते लाउड स्पीकर से, स्पीकर्स पे आता है, एक मिनट का भी और तीन तीन मिनट के भी, पांच सात बार तीन तीन मिनट के बजते हैं। पौने छह से बज शुरू हो जाता है, वैसे तो सात बजे से है, पर पौने छह का गीत भी बजता है। पता क्यों बजता है? वो किसी को पता नहीं है। बाबा जब साकार में थे तो सभी लोग पौने छह बजे ही क्लास में पहुंचा करते थे, तो उनके आह्वान के लिए ये गीत बजा। पहले गीत नहीं थे तो घंटी बजती थी किचन के आगे, एक बड़ी बेल, आपने देखा होगा स्कूलों में बजाते थे, और टन 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 करेंगे, चलो क्लास में सभी भागेंगे। सवा छह बाबा की मुरली शुरू होती थी, छह दस पर बाबा आते थे, पांच मिनट योग कराकर मुरली शुरू करते थे, ये वो गीत है। लेकिन हम इसको भी ट्रैफिक कंट्रोल का ही बना लें, फिर सात बजे शुरू होता है, साढ़े दस, बारह, साढ़े पांच, साढ़े सात, फिर साढ़े नौ, सात तो हो गए शायद, सातों में और हर घंटे, ये दोनों अभ्यास करने हैं। बोलो तैयार हैं? और ऐसे करेंगे, इसको मनोरंजक बनाएंगे। कहा ना बाबा ने, कठिन योग सरल योग, हाथ तो सबने उठा दिया था सरल योग है कल, पर सच्चे पूछें तो 5-10% ही होंगे, बाकी का कठिन योग है। सरल योग करने के लिए बाबा ने क्या विधि बताई? मैं कौन हूँ स्वमान के भिन्न भिन्न अभ्यास करने से योग मनोरंजन हो जाएगा। तो अशरीरीपन के अभ्यास, पहला अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, बिल्कुल अलग, हम दो, मैं और ये मेरा। और चिंतन थोड़ा सा कर लेना, एक मिनट भी कम समय नहीं होता, बहुत अच्छा समय होता है। ऐसे शरीर मैंने अनेक लिए हैं और छोड़े हैं, अब मैं इस देह में हूं, भ्रकुटी की कुटिया में, मैं फरिश्ता हूं, लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता, ये शब्द बहुत अच्छे बाबा ने दिए थे। मेरे अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है, ज्यादा नहीं सोचना मुझे लाइट का शरीर है या नहीं है, है तो मोटा मोटा शरीर, ये सब सोचने की जरूरत नहीं, मैं फरिश्ता हूँ, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। आधा आधा मिनट दोनों कर लो, एक मिनट नहीं तो, कई लोगों को एक मिनट बहुत लंबा लगता है, पूरा ही नहीं हो रहा, कितना समय हो गया, जिनका योग नहीं लगता वो कहते हैं एक मिनट है या तीन मिनट है, और आधा आधा मिनट करेंगे तो लगेगा तो फट से बीत गया। एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, संस्कारों की, देह की, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। एक एक संकल्प में बहुत इफेक्ट रहेगा, बड़ा प्रभावकारी रहेगा। संकल्प कर दे, स्वमान दे दे, मैं परम पवित्र हूँ, मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल गई हैं पूरे शरीर में, ब्रेन में, चाहे एक मिनट ही कर दो इसको या आधा मिनट करो, फिर मैं प्रकाश के शरीर में हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, संकल्प दे दें। तीसरी बार करेंगे, मैं आत्मा इस तन में आई हूँ, अवतरित हूँ, क्यों अवतार लिया मैंने, विश्व का कल्याण करने के लिए, विश्व का उद्धार करने के लिए, जितने सुंदर संकल्प होंगे उतनी मौज होगी, याद रखेंगे। जितने सुंदर संकल्प उतना ही मन मौज में आ जाएगा। अभी अब बाबा ने पीछे कहा था, पिछली बार जब बाबा आए थे उसे अगले दिन की मुरली थी, तुम इस नशे में रहो, हमें विश्व का उद्धार करना है, साकार मुरली में था। तो मैं आत्मा अवतरित हुई हूं विश्व का उद्धार करने के लिए, मैं फरिश्ता हूं, बंधन मुक्त फरिश्ता, सबको सकास देने वाला फरिश्ता, सबका सहारा हूं मैं। संकल्प कर ले, ठीक है। चौथी बार एक और अभ्यास, मैं आत्मा निराकार हूं, कुछ क्षणों के लिए फील करेंगे तेह है ही नहीं, मैं निराकार आत्मा और मेरे चारों ओर पावरफुल आभा मंडल ओरा घेरा है, मेरे चारों ओर आत्मा केवल, देह हूं देह है ही नहीं, कुछ देर। और पांचवा इसी का अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा परम धाम में हूं। बाबा को देखें बहुत अच्छा, लेकिन नहीं तो मैं शांति धाम में बैठी हूं, मेरा तेज बहुत ज्यादा है, ऐसे नहीं बिंदी, कई लोगों को समझ में नहीं आता, पेंसिल से बिंदी लगा दिए हूं मैं, ये नहीं, बहुत तेजस्वी। जो पढ़े लिखे वो जानते हैं, जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है वो उतनी ही पावरफुल होती है। तो आत्मा बहुत सूक्ष्म, बिंदी लगाने से मोटा होगा, अति सूक्ष्म और बहुत ज्यादा एनर्जी, रंग बिरंगी किरणें तेज मुझसे फैलता है, ऐसी मैं आत्मा परम धाम में हूं। पांच हो गए, इन पांचों को रिपीट करना, और भी हो सकते हैं दो चार, वो आपको खुद समझ में आएंगे, मुरलियों से मिल लेंगे। अपने स्वरूप को देखना बहुत जरूरी है, मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में हूं, जैसे आत्मा परम धाम में, मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में। एक बार अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता हूं, मेरे चारों ओर आभा मंडल है, बड़ा घेरा तेज है, मैं बहुत शक्तिशाली फरिश्ता हूं, शक्तियों का घेरा है, ऐसे ये ड्रिल करेंगे। फिर इसको रिपीट कर लेना, अगर 10 बार भी कर लिए तो एक ही दिन में मौज हो जाएंगी। पंजाबी लोग आते थे, गीत गाते थे, मौज जा ही मौज जा मधुबन में, मौज ही मौज है ना, मधुबन में मौज है और जीवन में भी मौज है। मौज उसको होती है, और आगे चले, एक तो जो व्यर्थ से मुक्त हैं, अब देखते होंगे, देख सकते हैं, जरा भी व्यर्थ हो गया, पर चिंतन चल गया, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अवगुण दिख गया, मौज गायब। इसलिए अगर मौज चाहिए तो किसी को ना देखकर केवल अपने को देखें और बाबा को। किसी को देखेंगे सब तो वैसे नहीं मिलेंगे जिसको हम पसंद करते हो, हमारी मनपसंद सब होंगे क्या दुनिया में? बाबा ने बता दिया, जितनी आत्माएं उतने उनके फीचर्स, अब चेहरे देखो मिलते हैं किसी के, सब अलग अलग, उतने उनके संस्कार, उसी तरह के उनके विचार, सबकी बुद्धि अपनी अपनी, तो जैसा हम चाहेंगे वैसा क्यों होगा, आत्माएं ही अलग अलग हैं, जैसा बाबा चाहता है वैसा भी तो नहीं होता, या होता है, जैसा बाबा हमें कराना चाहता है हम करते हैं, जब हम भगवान की नहीं सुनते तो हमारी कोई सुनेगा? बहुत माताएं शिकायत लेके आती हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। मैं तो हंसी में यही कहा करता हूं, आप सुनती हो बाबा की? अरे भगवान की नहीं सुनते, और वो भी हम जो बुद्धिमान हैं, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिनको पता है उसकी हर बात हमें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, उसकी हम नहीं मानते, तो कैसे हम कहेंगे कि बच्चे हमारी बात माने, हम उसकी माने, संसार हमारी बात मानेगा, सत्य तो यही है या नहीं? हम उसकी माने, संसार भी हमारी सुनेगा। तो मौजों की जीवन व्यतीत करनी है और आगे चले, मौज उनको प्राप्त होती है जो समानधारी हो जाते हैं। योग में भी जो बाबा ने कहा, भिन्न भिन्न स्वमानों के द्वारा योग करने से योग मनोरंजन बन जाता है, मन को आनंदकारी बनाने वाला होता है, नहीं तो योग कईयों को बोर भी करता है। और विशेषकर सवेरे का समय, अब ध्यान से देखना अपने को, रोज देख लो, कल फिर देख लेना, मनुष्य की बुद्धि, ब्रेन, मन उतना अच्छी तरह काम नहीं करता सवेरे नींद से उठे हैं, कि नहीं स्नान भी की नहीं किया है, थोड़ा फ्रेश नहीं है, नींद कैसी, सपने कैसे, होता है ना ये। अगर सवेरे सुंदर विचार मन में रहें तो योग में बहुत आनंद आएगा। इस टेक्निक को अपना लें आप। सुंदर विचार उत्पन्न करने के लिए बाबा के शब्द, सवेरे सवेरे स्वमानों की माला स्मरण करो, स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ, ये बाबा ने कहा है। वरदान में रिपीट होकर आई ये बात पीछे, वहीं से मैं ले रहा हूं इसको। तो स्वमानों का अगर अभ्यास करेंगे तो ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, विचार चलने लगेंगे। आपने सोच लिया, मैं एक महान आत्मा हूं, मेरा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है, जग जाएंगे, जैसे आंखें खुल जाएंगी, बाबा मुझे ऊपर से देख रहा है, कुछ देना चाहता है, और मैं ठंडी, जागृति आएगी ना, भगवान वरदान देना चाहता है और हम ठंडे, तो जागृति आ जाएगी। तो स्वमान अपने पास कई सारे रखने चाहिए। कहीं को याद ही नहीं आता, मैं एक महान आत्मा, उसके बाद क्या था, सोचने लगते कुछ था तो सही, क्या था पर याद ही नहीं आ रहा, फिर नींद आ जाती है। नींद आई एक बार तो ब्रेन और शांत, डल नहीं कहेंगे, पूरा शांत, फिर कोई नहीं सोचेगा, फिर तो एक ही संकल्प हो जाएगा, सो जाओ, बड़ी मीठी नींद आ रही है। तो मौजों का जीवन बिताना है तो अमृत वेले से मौज प्रारंभ करेंगे। मौजों का जीवन बिताना है तो सवेरे उठते ही वो संकल्प करेंगे जो जीवन में आनंद भरते हैं, खुशियां भरते हैं। मौज का अर्थ ही है खुशियों भरा जीवन, आनंद उससे भी ऊंची स्थिति है, आनंद से भरपूर जीवन, ईश्वरीय नशे से भरपूर जीवन, तीनों को मिला दो तो ये मौजों की जीवन हो जाएगी। ईश्वरीय नशे में भी स्वमान के साथ, ईश्वरीय नशे में भी सवेरे स्थित होना, थोड़ा सा अंतर कर लें। ईश्वरीय नशा हो गया, कौन मिला है, किसने मेरा भाग्य खोल दिया है, किसने आकर मुझे जीवन जीना सिखा दिया है, किसने आकर ये नया जीवन दिया, ये नशे हैं, इनमें स्थित होने से मौज ही मौज हो जाएगी। तो बिताएंगे सभी मौज का जीवन, इसके विपरीत कौन सा है? मौज तो है ही कंफ्यूजन, निराशा का जीवन, चिंताओं का जीवन, परेशानियों का जीवन, कंफ्यूजन वाला, क्या होगा क्या होगा, ये जीवन बच्चों का क्या होगा, ये जीवन बिजनेस धंधे में क्या होगा, कहीं कोरोना दोबारा आ गया तो क्या होगा, डर गए थे लोग पहले से ही बहुत, अभी सुना ना चीन में, पता नहीं झूठा या सच, कैसा समाचार था, डर गए दोबारा आ रहा है, फिर मुंह नाक बंद करने पड़ेंगे, बड़ा भारी काम। क्या होगा बताओ, मौज में जीने के लिए क्या सोचेंगे, क्या होगा, जो होगा हम उसमें ही आनंद मनाएंगे। सूखी रोटी मिलेगी उसमें भी आनंद, और बाबा भूखा रखेगा और आनंद, योग अच्छा लगेगा। ज्यादा खाने से गड़बड़ हो जाती है, मन के विचार बदल दो जीवन बदल जाएगा। क्या होगा ये नहीं, बाबा ने हाथ पकड़ा है उसके बच्चों को, कुछ नहीं हो सकता। कोरोना में बाबा के बच्चों के अनुभव बहुत अच्छे रहे, जिन्होंने अपने को बहुत मजबूत रखा। मैं एक अनुभव सुना दूं आपको। भिलाई में हमारा सेंटर है, 13 बहने, बहुत बड़ा सेंटर है। 13 को कोरोना हो गया, किसी ने भी हॉस्पिटल जाना स्वीकार नहीं किया, डॉक्टर अपने ही थे, उन्होंने कहा यहीं इलाज करेंगे। 2-3 बहनों को बाहर नीम का पेड़ है उसके नीचे बेड डाल दी गई। एक भाई, वो गाड़ी भी चलाता, सेंटर में बहुत सेवा करता, उसने 13 की सेवा की बिना मास्क लगाए। कहता मास्क से दम घुटता है, मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे को भी हो जाएगा, देखा जाएगा। बहुत निश्चिंत रहा, सबके पास जाना, उन्हें भोजन देना, पानी, ये सब जो चाहते हैं, उसको कुछ नहीं हुआ। मेरी गाड़ी वही चला रहा था, मैंने कहा तुम तो बहुत बहादुर हो भाई, क्यों नहीं हुआ उसको कुछ? मनोबल बढ़ा के रखा, मुझे सबकी सेवा करनी है, मुझे कुछ होगा ही नहीं। और वो डर पैदा कर लेता, 13 मरा मैं तो, मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास। क्या था 2 गज दूरी, क्या था वो मास्क है जरूरी, अब वहां 2 गज पे कैसे पानी देगा। तो डरा नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है, सभी याद रखें। विनाश काल चाहे कितना भयानक होगा, जो निर्भय रहेंगे, संकल्प कर दो मर गए तो बाबा के पास, जिंदे हैं तो उसकी छत्र छाया में। बच्चों का क्या होगा, चिंता अपनी नहीं होती, किसकी होती है? बच्चों की। बाबा को दे दो, तुम्हारे हैं अभी, नहीं भी तुम संभालना और मस्त हो जाओ, ना उन्हें कुछ होगा ना आपको कुछ होगा। ये बहुत बड़ी शक्ति काम करेगी। और जहां भय पैदा हो गया, भय जो है इन वायरस को आकर्षित करता है। मैं तब भी बहुत कहता था भयभीत न हो, नहीं तो आप कोरोना के वायरस को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आएंगे ही आपके पास। भय बहुत चीजों को आकर्षित करता है। जब मनुष्य भयभीत होता है, अब ध्यान से सुन लेंगे, जब मनुष्य क्रोधित होता है और जब वो भयभीत होता है, तो वो इस संसार की, संसार माना पूरा अंतरिक्ष, उसकी बैड एनर्जी से जुड़ जाता है, वो उसमें आने लगती है। समझ लें आप, ध्यान देंगे इस पर, इसलिए जो निर्भय रहेंगे वो मस्त रहेंगे। इसके विपरीत दूसरी चीज याद रखेंगे, जो श्रेष्ठ स्वमान में रहेंगे, जो ऊंचे महान विचारों में रहेंगे, वो इस कॉस्मोस की, सारे अंतरिक्ष की, संसार की गुड एनर्जी से जुड़ जाते हैं। यहाँ महानात्माएं बहुत काम कर रही बाबा के साथ, एडवांस पार्टी की बहुत आत्माएं उनसे जुड़ जाएंगे, उनकी मदद मिलने लगेगी, उनकी प्योर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आने लगेगी। ये बहुत ध्यान रखेंगे। तो मौजों के लिए श्रेष्ठ स्वमान, और सवेरे उठते ही ऐसे सुंदर संकल्प कर दें, जो सवेरे का समय लक्ष्य बना लो, 4 से 8, ये समय हमारा ईश्वरीय मौजों में बीते। जो 4 से 8 नहीं बिता सकते, वो 4 से 6 जरूर, 2 घंटे बहुत बड़ा समय है। किसी को रेस्ट भी चाहता है पीछे, मैं कभी ये नहीं कहता कि नींद आ रही हो योग के बाद और चाय वाय पी के जगते रहो, गलत सिद्धांत है। अगर आपको गहरी नींद आ रही और आप अपने को जगा रहे हैं ना, तो ब्रेन पर बहुत बुरा असर होगा, इसलिए उस टाइम 15 मिनट भी सो लेना बहुत कल्याणकारी होगा, हेल्दी लाइफ के लिए, सुंदर विचारों के लिए। लेकिन कोई ऐसी कट्टरता ना अपनाए कि योग के बाद सोना ही नहीं है, नहीं तो योग की शक्ति नष्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बोल देते हैं कोई कोई, अभी नींद आ रही है, योग के बाद 5 से 6 नहीं सोए, फिर ऑफिस में जाके सोने लगे, लोग कह रहे कैसे योगी हो, सो रहे हो, काम नहीं करना है क्या? ऑफिसर भी आंख दिखा रहा, मुरली में नींद निकाल लेते हैं, ठीक कहा आपने। इसलिए ऐसी कट्टरता की जरूरत नहीं है। शरीर को भी जो आवश्यकता है वो उसे देनी चाहिए। ये कट्टरता तो भक्ति में थी ना, माताओं ने कईयों ने किया होगा, निर्जल व्रत रखना है। अब प्यास लग रही है, पानी पीना नहीं, देवी खुश हो जाएगी, देवी को पानी पिला रहे, खुद प्यासे रह रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर होता है तो उसका कुछ समाधान करना अलग चीज है। अगर आपका बिना सोए काम चलता है तो चलाओ, लेकिन उनके लिए खास जिनको दिन में रेस्ट नहीं है, ऑफिस वर्क है, कईयों का हैवी वर्क भी होता है, कई स्टूडेंट होते हैं, उनको फिर दुकानदार होते हैं, फिर वहां नींद आती है। इसलिए फ्लेक्सिबल। अगर आपको बुरे विचार आते हैं सोने से तो आप न सो, कुछ दिन देखो, या सो मुरली थोड़ी सी पढ़कर फिर सो जाओ आधा घंटा, तो विचार सुंदर रहेंगे। दिनचर्या तो यही होगी, उसमें ही कुछ अभ्यास करो, पर सवेरे मौजों में अपने समय को बिताना है जरूर। आगे पीछे कुछ भी कर लो, मैं तो ये कहूंगा, नींद आ रही सो जाओ, लेकिन सवेरे के समय को आनंदों में भी। मुझे बताते हैं सर्विस वाले कि हम तो मुरली से आके, हमें 10 बजे ड्यूटी पे जाना होता है, मुरली से आके नाश्ता करके एक घंटा सो जाते हैं 8:30 से 9:30, बस सारा दिन आनंद में बीतता है। ये हरेक को अपने खुद अपनी दिनचर्या देख के मैनेज करना, अपनी सेटिंग करनी। इसमें सभी के लिए एक सिद्धांत नहीं रखा जा सकता, लेकिन अपने को कष्ट नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा। सवेरे तो मान लो योग कर भी लिया, लेकिन सारा दिन मजा ना आए तो जो योग की शक्ति है वो पूरी हो जाएगी सारे दिन में। इसलिए सारा दिन भी हमारा मौजों में बीते, आप समझ सकते हैं, जिसको नींद की कमी हो जाए, सिर दर्द होने लगेगा, हाई बीपी भी हो सकता है, और वो फिर कष्टदायक होंगे। इसलिए जीवन में सुंदर बैलेंस रखकर चलना, यही बुद्धिमानी है। तो मौजों में बिताएंगे इस जीवन को सारे दिन के लिए भी, जो कल बाबा ने कहा, संगम का हर दिन, क्योंकि रोज उमंग उत्साह है। तो ये हर दिन उत्सव है, उत्सवों पे खुशी रहती है ना बहुत। हम अपने हर दिन को उत्सव बना दें, मौजों में बिताएं, तो कोई बहुत खुशी के संकल्प हमें अपने पास रखने चाहिए। और वो संकल्प कहां से मिलेंगे? मुरली से। तो रोज की मुरली सुनते हुए खुद भी कुछ पढ़ लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, बाबा मुरली शिवरात्रि पे चला रहा है, चलाई ना अभी, सेवा पर जोर दे रहा है, तो उसमें वो संकल्प नहीं होते, सेवा का ही उमंग बढ़ाएगा बाबा। तो हमें कुछ खुशी और नशे के पॉइंट्स अपने पास लिख कर भी रखने चाहिए। उन्हें पढ़ लिया तो सारा दिन 2-3 भी हमारे पास सुंदर संकल्प होंगे तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। सबको याद रखना है, एक नशे का संकल्प 100 व्यर्थ संकल्पों को नष्ट कर देता है। इसे ये प्रश्न जो बहुत होगा रहता है कि व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, चलते भी हैं और कुछ चलाए भी जाते हैं, आदत पड़ जाती है। एक एक नशे का संकल्प कौन मिला है इस जीवन में, सोच के देखना। मेरे तो 5000 वर्ष ही सफल हो गए, 5000 साल की लंबी यात्रा ही सफल हो गई। जब हम बहुत थक गए थे एंड में, तो थकान मिटा दी स्वयं भगवान ने आकर। एक ही संकल्प काफी है ना, 5000 साल की यात्रा ही सफल हो गई, बहुतों का तो जीवन ही निष्फल हो रहा है, हमारे तो 5000 साल ही सफल हो गए, यात्रा के एंड में भगवान का मिलन हो गया, उससे सत्य ज्ञान मिल गया, जिस ज्ञान की तलाश थी अब तक, जिसके लिए रिसर्च हो रही थी, पुस्तकें पढ़ी जा रही थी, सत्य की खोज चल रही थी, वो सत्य स्वयं हमारे पास आ गया। मिला सभी को सत्य ज्ञान? देखो, पुस्तकों ग्रंथों से नहीं मिला था, कोई बुरा न मानना। चारों वेद पढ़ लिए, मैं पूछा करता था और आजकल हंसी में किसी किसी से बात कर लेता हूँ कि जब वेद पढ़ने प्रारंभ किए तब भी तुमने वो चार पंक्तियां गाई थी, अस्तो मा सद्गमे, चार है ना वो, सत्य से असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से, और चारों वेद पढ़ के फिर वही कह रहे हैं अस्तो मा सद्गमे, तो फायदा क्या हुआ? अब कहो ना हम सत्य में आ गए, हम प्रकाश में आ गए, हमारी सत्य की खोज समाप्त हो गई। मैं पूछता था बहुतों से, सब वेद ग्रंथ उपनिषद गीता सब पढ़ ली, सत्य की खोज समाप्त हुई, सत्य मिल गया? सोचने लगते थे लोग, या और कुछ जानना बाकी है? अगर कुछ नहीं बताते तो मैं पूछता था, बताओ मुक्त होकर कहां जाओगे? किसी को पता नहीं है, कहां से आए हो इस संसार में, किसी को पता नहीं। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाया हुआ नहीं, इसको नींद तो आ रही पर जगाओ तो अभी बता देगी परम धाम से आए हैं। कहां से आई हो? परम धाम से। देखो जगते ही बता दिया। हाँ नहीं, बच्चों को नींद आती है, कोई बात नहीं। तो कितनी बड़ी प्राप्ति हुई, तो हम चर्चा कर रहे थे कि एक एक विचार हमारे जीवन को मौजों का जीवन बना देगा। चिंता हो जाए, फिकर हो जाए, तो क्या करो? सुना बताओ ना अभी की पॉइंट, एक मुरली पहले की तो है। ये सब को अभ्यास करना है, खूब गहरा अभ्यास करो तो सारे फिकर चिंताएं परेशानियां मिट जाएंगी। क्या अभ्यास था? मेरे को तेरे में बदलो, फिकर बाप को देकर फकुड़ ले लो नशा, और बन जाओ बेफिक्र बादशाह, मौजों का जीवन हो जाएगा ना, सतयुगी बादशाही से भी सुंदर बादशाही। तो जहां भी मैं और मेरा आए, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, चिंता तो होगी। अब ये तो हम नहीं कह सकते, नहीं पढ़ते नहीं पढ़ो, हम चिंता क्यों करें, तुम जानो, ये तो नहीं कह सकते ना, चिंता तो होगी। क्या करें? बाबा के बच्चे, उनका भविष्य बाबा को अर्पित करो। गहरी बात है ये, मोटी नहीं। ये नहीं कहेंगे तेरे बच्चे अब तुम पढ़ाओ इन्हें, ये नहीं, गहरी बात जो समझ ले उसको बहुत बड़ी समझ आ जाएगी। बच्चे मानते नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे बुरे संग में जा रहे हैं, चिंता का विषय है। कहने से काम नहीं चलेगा कि चिंता ना करो, लेकिन इस उनकी जिम्मेदारी बाबा को अर्पित करो, जिम्मेदारी, और फिर अपने कर्तव्य भी करो। ये नहीं जिम्मेदारी दे के और निश्चिंत हो गए और फिर कुछ करना नहीं है, बच्चों को कहना भी नहीं है कि पढ़ो, नहीं, अपना कर्तव्य करना है। लेकिन चिंता के बिना तो जीवन आनंद में बीतेगा, नहीं तो क्या हो रहा है, बहुतों के परिवार में कोई एक व्यक्ति सभी की खुशी छीन रहा है, चैन से नहीं रहने देता, आपको योगी नहीं बनने देता, वो नहीं करने देता जो आप करना चाहते हैं। देखो, किसी एक व्यक्ति का दबाव मन पर हो, दबाव या उसकी चिंता या उसका चिंतन, तो मनुष्य के श्रेष्ठ विचार दब के खत्म हो जाते हैं, उसकी चिंतन शक्ति नष्ट हो जाती है, चिंतन शक्ति तभी महान बनती है, महान विचार आएंगे बुद्धि में जब हम मन बुद्धि को स्वतंत्र महसूस करेंगे। कोई भी परतंत्रता नहीं। परतंत्रता को आप सब समझते हैं, किसी के अधीन होकर मन चल रहा। विकारों की परतंत्रता तो थी, वो तो बहुत छूट गई, लेकिन किसी मनुष्य की भी परतंत्रता हमारे विचारों को दबाए रखती है। सुंदर विचार इसलिए एकांत में, खुले आकाश के नीचे, बिल्कुल जब हम मुक्त हों हर चीज से, किसी के भी वाइब्रेशन से, तब आते हैं। ऋषियों के लिए दिखाया कहीं कहीं, जब वो ग्रंथों की रचना करते थे तो बिल्कुल अकेले हो जाते थे, अपने शिष्यों को भी दूर भेज देते थे, किसी के वाइब्रेशन हमको ना आए, जो आंतरिक प्रेरणाएं आ रही हैं वही लिखी जाएं। तो मौजों का जीवन बिताना है, सब चिंतन करें मेरे साथ, संगम योग। भाग्यवान आत्माओं को प्राप्त हुआ है, उन्हें प्राप्त हुआ है जो इस संसार की सबसे अधिक पुण्य आत्माएं हैं, जो देव कुल की आत्माएं हैं, जिनके अंदर देवत्व भरा हुआ है। और कौन है वो सब? हम हैं वो सब। तो हम बहुत भाग्यवान हैं। ये अंतिम समय, आप बस इतना सोच लो, अगले 10-12 साल मुझे मौजों में बिताने, ईश्वरीय मौज में। मौजों में तो वो भी सोचते हैं जो शराब पीते हैं, वो नहीं, वो तो मौज को नष्ट करने वाला व्यसन है। मुझे अगले 10-12 साल ईश्वरीय मौजों में व्यतीत करने हैं। जो कुछ होता है होने दो, थोड़ी देर सोच लो, जो कुछ होता है होने दो, कोई हमें गाली देता है देने दो, क्या होगा बताओ, क्या होगा? ईश्वरीय मौजों में जीवन बीतने लगा तो वाइब्रेशंस इतने सुंदर होंगे घर के, कि आपका कामकाज, कारोबार, किसी का बिजनेस, धंधे सब सुंदर चलेंगे, घर में बीमारियां नहीं आएंगी, विघ्न नहीं आएंगे। ऐसे ही नहीं है कि मौजों में रहना है बस, विघ्न समाप्त, बीमारियां भाग जाएंगी, काम धंधे अच्छे चलेंगे, यही तो चाहिए ना मनुष्य को। तो करेंगे संकल्प सभी, 10-12 साल बीमारी है तो क्या करेंगे, मौजों में जिएंगे या बीमारी कॉन्शियस? बीमारी होती है उसका प्रभाव रहता है, कहना तो इजी है कि भूल जाओ, पर जब दर्द हो रहा हो भूलते कहाँ है। हल्का जितना रहेंगे, बाबा का ये महावाक्य याद रखना सभी, जितने हल्के रहेंगे बीमारियां उतनी ही हल्की हो जाएंगी। तो मौजों के जीवन से सब कुछ सुंदर चलेगा, ये सिद्धांत भी सब याद रखेंगे। ये नहीं सोचेंगे ये बात है वो बात है, मौज में कैसे रहें, ये सोचेंगे हम मौज में रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पसंद है बात भाइयों को? पसंद है? जो कहीं भी थोड़ा बहुत दबाव है, उदासी है, या जीवन में निराशा आती है, चिंताएं होती हैं, कलयुग का अंत है, यहाँ सब कुछ तो अच्छा नहीं है, बिगड़ा हुआ खेल ज्यादा है, लेकिन बस यही याद रखेंगे, हमारी स्थिति श्रेष्ठ तो बिगड़ी हुई चीजें भी ठीक हो जाएंगी। इस सिद्धांत को सभी को ख्याल रखना है। तो भिन्न भिन्न स्वमान का अभ्यास करेंगे, कल सवेरे से ही करना, और ये टेक्निक यूज करना, स्वमानों को याद करके ब्रेन को, मन को एक्टिव बनाना सवेरे। पहले 5 मिनट में ही कर लेना। अगर पहले 5 मिनट कोई अपने को संभाल ले और सुंदर विचारों में आनंदित हो जाए तो बस फिर अमृत वेला सुखकारी, फिर नींद का प्रभाव भी कम होगा। और होगा यही फिर, अब दूसरा सिद्धांत है कि अगर हमारा 1 घंटा बहुत सुंदर स्थिति में बीत जाए तो फिर नींद आएगी भी नहीं, फिर नींद नहीं आती है, बहुत अच्छे अनुभव होंगे, तो सभी मैंने ट्रैफिक कंट्रोल की बात भी की, याद रहेगा, अभी भी गीत बजेगा, एसडीडीपन और फरिश्तेपन के अभ्यास में सभी रहेंगे। पहले अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा निराकार हूं, देह मानो है ही नहीं। ओम शांति।